परम तेजस्वी भगवान कृष्ण के प्रभाव को देखकर देवराज का सारा घमंड चूर हो गया। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, पिता गुरुस्तम जगता मधीशो दुरतय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुन्मन जगदीश मानिनाम। हे नाथ, आप जगत के पिता हैं, लोक गुरु हैं, स्वामी हैं, सबके नियंत्रक हैं, अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए आप लीला करते हैं। हम लोग अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, ऐसे लोगों का मान भंग करने के लिए आपका ये विचित्र लीला हुआ। बहुत सुंदर स्तुति किए। अब एक एक श्लोक में तो हम नहीं जा सकते, प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, हे सर्वात्मा वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हैं, भक्त वत्सल हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्व बीजाय सर्वभूतात्मने नमः। आप सभी जीवों के कर्म फल देने वाले हैं, आपने जीवों के समान कर्म बस होकर भी स्वतंत्रता से अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, उनके अनुसार शरीर धारण करते हैं, सबके मूल कारण हैं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवन् गोष्ठ नासाया सारवायु भी चेष्टितं विहते जग्गे मानिना तीव्र मन्युना। हे प्रभु, मेरे अभिमान का अंत नहीं, मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। मैंने देखा कि मेरा यज्ञ नष्ट हो गया है, बंद हो गया है, तो मैंने इसके बदले में मूसलाधार बारिश किया, आंधी किया, ब्रजवासियों को नष्ट करना चाहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तवेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, आप मुझ पर अनुग्रह किए हैं, बहुत बड़ी दया की है, मेरी चेष्टा को, मेरे प्रयास को व्यर्थ करके मेरे घमंड के जड़ को ही उखाड़ दिया है। बहुत अच्छा किया प्रभु, मैं अपने को ईश्वर मान रहा था, वास्तव में आप सबके स्वामी हैं, गुरु हैं, आत्मा हैं, हम आपके शरण में हैं। इस तरह से देवराज इंद्र क्षमा याचना कर रहे हैं। इस प्रकार से देवराज इंद्र स्तुति किए। उसी समय गोलोक से कामधेनु गायें आकर कृष्ण की अभिषेक करती हैं, अपने स्तन से दूध बरसा करके उनका अभिषेक करती हैं और कह रही हैं कि हे जगत के स्वामी, आप ही हमारे परम पूज्य आराध्य हैं। ये इंद्र त्रिलोकी का स्वामी होता रहे, लेकिन हमारे इंद्र, हमारे स्वामी तो आप हैं। इंद्र का मतलब मालिक, ईश्वर, स्वामी। गाय की, ब्राह्मण की, देवता की, साधु जनों की रक्षा के लिए आप स्वामी बन जाइए, इंद्र बन जाइए, हम गायें आपकी अभिषेक करेंगी। तो कामधेनु गाय दूध से स्नान कराने लगी और फिर देवराज इंद्र आए ऐरावत पर चढ़कर और आ करके उनके सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर भगवान का अभिषेक किए। और देवराज इंद्र कहते हैं कि हे गोविंद, हम आपको प्रणाम करते हैं, आज से आपका नाम गोविंद रहेगा। अनुभव कर रहे हैं इंद्र, वास्तव में आप ही गोविंद हैं, गायों के रक्षक आप हैं। जिस समय देवराज इंद्र इनका अभिषेक कर रहे थे भगवान का, उस समय देवर्षि नारद, तुम्बरु, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध सभी लोग आ गए और भगवान के जस गाने लगे। बहुत सुंदर जस गान किए, जो जगत के पाप ताप को मिटाने वाला है। इस तरह से जितने देवता आए, सभी लोग नंदन बन के पुष्प लेकर आए थे स्वर्ग के और भगवान के ऊपर गिराए। तो जिस गिरिराज की तलहटी में भगवान का अभिषेक हुआ, गोविंद नाम पड़ा, गायों ने अभिषेक किया, उस स्थान पर आज गोविंद कुंड है। इस तरह सब जगह आनंद छा गया। जिस समय भगवान का अभिषेक हुआ, उस समय विविध प्रकार के रसों का बाढ़ नदियों में आ गया, सब जगह अनेक प्रकार के औषधि धन धान्य बढ़ गया, सब जगह सुख समृद्धि छा गई। चारों तरफ आनंद छा गया। इस प्रकार इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके, उनका अभिषेक करके, भगवान से अनुमति प्राप्त करके स्वर्ग की यात्रा किए और सभी देवता गंधर्व आदि अपने अपने लोक को चले गए। फिर भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ आनंद से लीला विहार करने लगे। तो इसके बाद 28वें अध्याय में एक लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कार्तिक के एकादशी को नंद बाबा उपवास किए थे और रात में जागरण भी किए थे। द्वादशी लगने के बाद वो जमुना में स्नान करना चाहते थे, लेकिन उनको समय का ज्ञान नहीं हो पाया। वो अचानक उठे, सोचे कि अब घोर हो गया होगा, बस वो चल दिए आसुरी बेला में, रात्रि में, मध्य रात्रि में, और आ गए जमुना स्नान करने के लिए अकेले। और जमुना जी में आ करके अपना वस्त्र तट पर रखे और जो पहने हुए वस्त्र थे उसके साथ जमुना में प्रवेश किए स्नान करने के लिए। तब तक वरुण जी के अनुचर उनको असमय में जमुना में स्नान करते देखकर पकड़ लिए और पकड़ करके ले गए वरुण जी के पास। इधर ब्रज में जब हल्ला हुआ कि अरे नंद बाबा स्नान करने गए, उनका पता ही नहीं है, उनका सूखा कपड़ा तट पर है, अब सुबह में रोना धोना ब्रजवासी मचाए, कृष्ण बलराम के पास भी आए, अब क्या होगा, ये नंद बाबा का खोज करना चाहिए, सब लोग लगे चिल्लाने। तो भगवान श्री कृष्ण जब सुने तो सबका रोना धोना देख कर सर्वशक्तिमान भगवान ब्रजवासियों का आश्वासन दिए। जब गर्गाचार्य जी कहे ही थे कि सारे विपत्तियों से रक्षा करेंगे तो रक्षा करेंगे, बस चल दिए और जा करके भगवान वरुण जी के पास पहुँचे। सर्वशक्तिमान भगवान जब वरुण के पास गए तो उनको देखकर वरुण जी एकदम आनंद में आनंदित हो गए और कहने लगे कि आज मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया। अद्य में निभृतो देहो दैवार्थो भी गतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान अब आपको पार मत होना। वास्तव में आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर जिसको मिला निश्चित रूप से भव सागर से पार हो गया। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न जत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आप भक्तों के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं, जोगियों के परमात्मा हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे गोविंद, मैं जानता हूँ आप क्यों आए। भगवान अभी कुछ बताए नहीं, तब तक वरुण जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप क्यों आए हैं। आप अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, अपने पिताजी के लिए आए हैं। हमारा एक अनुचर आपके पिताजी को पकड़ कर लाया है। आप सर्व अंतर्जामी, सबके साक्षी हैं। हे विश्व विमोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए, अपने पिताजी को ले जाइए। आए दर्शन दिए, आप ले जाइए। गोविंद अनियता में स पिता में पितृवत्सल। हे गोविंद, आप ले जाइए, आप पितृवत्सल हैं। तो इस प्रकार वरुण देव ने भगवान को उनके पिता नंद बाबा को दिया और उनको लेकर आए। उनको देखकर सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। कृष्ण एक तरह से मरे हुए पिता को ला दिए। क्या क्या नहीं किए, नंद बाबा को जमुना में डूबने से बचा लिए, एक बार अजगर से भी बचाएंगे और देवकी जी के मरे हुए पुत्रों को भी ला देंगे। ऐसा पुत्र हुआ है, इतना आनंद है माता पिता को, ब्रजवासियों को। इस प्रकार सभी लोग आनंदित हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। और आगे एक छोटी सी घटना का वर्णन करते हैं। भगवान के मन में आया कि इन ब्रजवासियों को अपने दिव्य वैकुंठ लोक गोलोक का दर्शन करावे, नित्य गोलोक। तो एक दिन जमुना के जलाशय में ले गए जहाँ पर अक्रूर जी स्नान किए थे, उसी जलाशय में भगवान ले गए और ले जाकर के स्नान कराए। कहे कि आप लोग यहाँ नहाइए, डुबकी लगाइए, देखिए यहाँ क्या है। वहाँ उन लोगों को उसमें डुबकी लगवाए, वे सब ब्रह्म हृदय में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद देख रहे है गोलोक का सीन। तो इस प्रकार भगवान अपना परम धाम का दर्शन कराए। उस दिव्य भगवत स्वरूप को देखकर नंद आदि गोप आनंद में भर गए। वहाँ क्या देख रहे हैं कि सारा वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण की स्तुति कर रहा है, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तुयमानं सुविस्मिता। सब लोगों को बहुत आनंद हुआ। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत अलौकिक लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। अब अवसर पाकर आगे भगवान के परम दिव्य महाराज का वर्णन करते हैं। महाराज जो श्रीमद् भागवतम का प्राण है, 5 अध्यायों में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसको पंच प्राण कहा गया है भागवत का। जब विविध प्रकार का रस एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसे रास कहते हैं। जहाँ केवल परस्पर दूसरे को सुख करने की वासना है, मुख्य रूप से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की जहाँ लालसा है उसको प्रेम कहते हैं, और उस प्रेम की विविध रूप जो है, विविध वैचित्री है, वही रास है। जब भगवान देख लिए कि अब उचित अवसर उपस्थित हो गया है, तब भगवान रास के लिए अपनी जोग माया को स्मरण किए। भगवान अपि तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपाश्रितः। भगवान अपि कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि षडैश्वर्य परिपूर्ण आत्माराम पूर्ण काम, किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है सुख के लिए, वो स्वयं सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर भी श्री कृष्ण जिन रात्रियों के लिए चीर हरण के समय गोपियों को संकेत किए थे, वे सभी रात्रियों को एक रात्रि के रूप में उल्लसित किए। सभी रात्रियां एक साथ जुट गईं, शरद कालीन बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल गए और मह मह महक रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। भगवान ने देखा वृंदावन को, वीक्षा देखे और देख करके उनको दिव्य बनाए और सुंदर बनाए। गोपियां तो पहले से ही चाहती थी, भगवान भी अपने अचिंत महाशक्ति जोग माया, अपने आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के सहारे उन गोपियों को निमित बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किए। मनश्चक्रे मन बनाए कि अब रास करेंगे। अमना होकर कामना रहित होने पर भी मन बनाए, कामना रहित होने पर भी अपने प्रेमिकाओं की इच्छा पूर्ति के लिए मन स्वीकार किए, इसे प्रेम कहते हैं। तत् सुख सुखित्वम, भक्त कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं कृष्ण भक्तों को, इसको प्रेम कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान संकल्प किए और भगवान के संकल्प करते ही प्रकृति में अद्भुत अलौकिक सौंदर्य छा गया। इतना सुंदर सौंदर्य छाया पूर्व क्षितिज से, चंद्रमा उदय हुआ बड़ा सुंदर लालिमा के साथ। ऐसे लग रहा था पूर्व दिशा के मुखमंडल पर चंद्रदेव अपने शीतल कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दिए, जैसे परदेश से आया हुआ कोई प्रियतम पति अपने प्राण प्रिया को आनंदित करने के लिए रोली लगाता है, अपने प्रिया को प्रेम से मिलता है। वैसे चंद्रमा पूरब दिशा को श्रृंगार किया लालिमा से। तब तक भगवान अपने प्रेयसियों को बुलाने के लिए बंसी बट पर बैठ करके मधुर बंसी का तान छेड़ते हैं। बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियों की विचित्र दशा हो गई, विचित्र दशा को प्राप्त हुई, चल दी और ऐसी अवस्था में चली, कोई दूध दूह रही है खीरक में तो दूध दूहना छोड़कर चली गई, कोई चूल्हे पर उफनता हुआ दूध कोई गर्म कर रही उसी तरह छोड़ दी, कोई हलवा बना रही है लपसी पका रही है उसी को छोड़कर चल दी, कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही है बच्चे को रख कर चली गई, कोई भोजन परोस रही है भोजन खिलाते हुए पतियों की सेवा छोड़कर चली गई अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जहाँ साड़ी पहनना चाहिए ओढ़नी पहन ली है, जहाँ काजल लगाना चाहिए वहाँ सिंदूर और सिंदूर के जगह पर काजल, जो आंख में लगाना चाहिए वो गाल पर लगा लेती हैं, और देख करके घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं, अरे कहाँ जा रही हो, लेकिन किसी के रोकने से रुकी नहीं। कुछ गोपियों को घर में बंद कर दिया गया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ध्यान की तन्मयता से घर में अरेस्ट गोपी भी कृष्ण के पास पहुंच गई। अपने पास अपने प्रेयसियों को देखे जब भगवान, तो बड़ी विनोद भरी वाक चातुरी से मोहित करते हुए भगवान बोलते हैं, हे महाभागवती गोपियों, आइए आइए आपका स्वागत है। बताइए हम आपको कैसे प्रसन्न करें, आपके लिए हम क्या करें, कौन काम करें, किस बात से आप सुखी होंगी। ब्रज में सब कुशल है ना, सब ठीक ठाक है ना, इस समय रात्रि में आप लोग कैसे आ गई, आने का क्या कारण है, ठीक ठाक है ना। रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इस घोर रात्रि में आप लोग कैसे आ गई, ये स्वयं भयावना है, बड़े भयानक जीव इस वन में रहते हैं, आप लोग लौट जाइए। पहले तो स्वागत किए कि आप आए, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग ब्रज की शोभा देखिए, लेकिन फिर कहते हैं कि आप लोग जाइए, अब आप लोग जाइए, ये इस वन में रुकना ठीक नहीं है, जंगल में स्त्रियों को रुकना ठीक नहीं है रात्रि के समय। प्रति यात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, आप लोग ब्रज में लौट जाइए। वृंदावन देखने के लिए आई थी, इतना सुंदर शोभा रात्रि में, चंद्रमा की रात्रि में, तो वृंदावन की शोभा आप लोग देख ली, अब आप जाइए, आपके माता पिता भाई सब इंतजार करते होंगे, पति लोग इंतजार करते होंगे, आपको खोजते होंगे जहां तहां, आप जाइए। मातरह पितरह पुत्रा भ्रातरह पतयश्च वह विचिन मंती पश्यंतो मा क्रीढ्वम बंधु साधु सम, आप उनको परेशान मत कीजिए, भय में मत डालिए, आप जाइए। आप गायों की सेवा छोड़कर चली आई, नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर चली आई, जाइए उन्हें सुखी कीजिए। अगर हमसे स्नेह है तो कहीं भी रहकर हमारा स्मरण कीजिए, हमसे प्रेम बना रहेगा, हमसे तो सभी लोग प्रेम करते हैं। आगता ही उपपन्नम वह प्रियंते मई जनतव, सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं। आप लोग स्त्री हैं, स्त्रियों का कर्तव्य है कि अपने भाई बंधु पति पुत्र संतान की सेवा करें, सबकी सेवा करना है। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करना है उसको कभी भी किसी भी अवस्था में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पिवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेप्सु भीरपात की, किसी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समझा रहे, समझाने का प्रयास किया और कहे कि आप लौट जाइए लौट जाइए, लेकिन उनका चित्त तो कृष्ण में लग गया था, अब लौटने की नाम नहीं ले रही थी। गोपियां कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ऐसे निष्ठुर मत बनिए, ऐसा निष्ठुर मत बनिए, हमारे हृदय की बात आप जानते हैं, आप सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, आप जानते हैं कि हम किस अवस्था में आए हैं, इस तरह से निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, हम सब कुछ छोड़कर आपके चरणों से प्रेम करती हैं। यह निश्चित रूप से सत्य है कि आप स्वतंत्र हैं, हठीले हैं, आप जो चाहेंगे वही करेंगे, आप पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण सभी जीवों से समान रूप से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, आप निश्चित रूप से सम हैं, लेकिन हम आपके भक्त हैं, हमारा पक्ष लीजिए। मैवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम संतज्य सर्व विषयम तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रह त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। आप हमारे भाव को जानते हैं, हमें इस तरह निष्ठुर वचन मत बोलिए, हमें ठुकराइए मत। हे नाथ, आप कृपा कीजिए, हे मेरे प्राण बल्लभ, हे सखे, आप हमारे हृदय के भाव को जानते हैं, आपके सुंदर मंद मुस्कान मधुर चितवन प्रेम भरी बोली हमारे हृदय में बेचैनी उत्पन्न कर दिया है, आपसे मिलने के लिए लालसा बढ़ गई है, आप अपने अधरों के रस से हमारे हृदय की आग को बुझा दीजिए। प्रियतम, हम सच कहती है कि आपके विरह व्यथा से हम अपने शरीर को जला देंगी या ध्यान करके किसी न किसी समय आपको प्राप्त करेंगी। रासाचार्य लोग जो ब्रज में रास करते हैं, वे लोग एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भगवान जब इस तरह आग्रह करने लगे तो गोपियां एक कहानी कहती हैं कि आप पतिव्रताओं के पातिव्रत धर्म का प्रवचन कर रहे हैं, इसी प्रकार की एक पतिव्रता की कहानी हम आपको सुनाती हैं और आप निर्णय दीजिए क्या उचित है क्या अनुचित। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, बहुत प्रेम से सेवा करती थी। एक बार उसके पति परदेश में जाने लगे, विदेश में। तो जब विदेश में जाने लगे तब वह स्त्री तब छपटाने लगी कि हम अपने पति की कैसे सेवा करेंगी। उसके शांति के लिए वे अपना मूर्ति बनवाए और कहे कि देखो तुमको लेकर तो जा नहीं सकता, ये हमारी मूर्ति है, इसकी सेवा करो और हम कुछ काल के बाद परदेश से लौटेंगे तो फिर हमारी सेवा करना। और वो पतिव्रता स्त्री लगी विग्रह की सेवा करने, मूर्ति की। अब उनको पूजा करती, समय से खिलाती, स्नान कराती, सुलाती, मूर्ति की सेवा में लग गई। तो कुछ काल के बाद पति आए, किवाड़ बंद करके अपने पति की श्रृंगार कर रही थी, कपड़ा पहना रही थी, सेवा कर रही थी। पति आ गए दरवाजे पर, आ करके आवाज दिए तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे पूछना चाहती हैं कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए जो किवाड़ बंद करके अपने पति के मूर्ति की सेवा कर रही है, तो उसको सेवा करना चाहिए कि सेवा छोड़ करके अपने आए हुए पति के दरवाजा को खोलना चाहिए, ये उनकी सेवा करना चाहिए, आप निर्णय कीजिए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं बड़ा मूर्ख है, इसमें क्या विचार करना है, जब असली पति आ गया तो नकली पति की क्या सेवा करना है, इसमें बहुत सोचने की बात क्या है। अरे नकली पति तो तभी तक न था जब तक असली पति नहीं आया था। तो गोपियां खूब जम कर ठठा कर हंसी, उसी प्रकार प्रियतम अब तक तो मैं नकली पति की सेवा कर रही थी, अब असली पति के पास आ गई तो आप बताइए कैसे जाए, हम आपके शरण छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अनुभव के साथ कह रहे हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, इस संबंध से हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यद्यपि जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, लेकिन गोपियों के व्याकुलता भरी बात सुनकर दया से भर गए, आत्मा राम होते हुए भी भगवान तैयार हो गए रास के लिए और क्रीड़ा प्रारंभ किए, रास प्रारंभ किए। तो किस प्रकार भगवान रास करते हैं गोपियों के साथ, यह तो बड़ा ही मार्मिक अद्भुत प्रसंग है, फिर इसको हम दूसरे सत्र में पूरा करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री राम।